हैं हम थोड़ी देर के लिए प्रभुपाद के वार्तालापों से कुछ चर्चा करेंगे। इस विषय में चर्चा है जो कि वृंदावन में हुई थी। ये है विषय, इसका है शहरों से गांव में जाना। प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि ग्रामीण व्यवस्था को हमें सुधारना चाहिए ताकि शहर के लोग ग्राम में आने के लिए आकर्षित हो जाएंगे। खेती 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 खेती, प्रभुपाद कहते हैं ये कृष्ण का कार्यक्रम है। बड़ी 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 इमारतों के बारे में इतना चिंता नहीं करना, ज्यादा जोर ग्रामीण व्यवस्था पर देना, ये प्रभुपाद कहना चाहते हैं। तो चर्चा चल रही है तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि क्या खबर है। दूसरे भी बातें हैं लेकिन हम उनको नहीं पढ़ रहे हैं, केवल जो संबंध की बातें हैं। प्रभुपाद पूछ रहे हैं कि क्या खबर है, तो बोल रहे हैं कि हमें एक खेत मिला है और हमने खेती अभी शुरू की है। तो प्रभुपाद ने कहा, हाँ कृष्ण ने तुमको अच्छा अवसर दिया है, अभी अच्छा खेती करो, उधर मंदिर बनाओ और अच्छी तरह से उत्साहपूर्वक आगे बढ़ो। तो भक्त कहते हैं कि आज सुबह हमने अखबार में पढ़ा कि लोग गांव से शहरों में बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री चाहते हैं कि ऐसे अच्छे ग्रामीण कार्यक्रम बने जिससे कि खेती की व्यवस्था और ग्राम के कार्यक्रम अच्छी तरह से बढ़ जाएंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं ये सच्चा काम है। यदि प्रधानमंत्री को ये बात अपने मन में है तो फिर बहुत अच्छी बात है। और फिर वो भक्त बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक अच्छी बात कही। वो कहने लगे कि ग्रामीण भाग में जो चीज़ें हैं उनको हम सुधारना चाहते हैं ताकि लोग शहरों से गांव में भागने लगे। अभी लोग गांव से शहर में भाग रहे हैं ना, तो उस टाइम की बात है। वो बोल रहे हैं कि फिर लोग शहर से गांव में भागेंगे, ऐसा हम करना चाहते हैं, ऐसे वो प्रधानमंत्री ने बोला था। तो प्रभुपाद कहने लगे, हाँ मैं यही चाहता हूँ, जहाँ भी मैं जाता हूँ मैं यही कहता हूँ। देखो कितनी सारी ज़मीन पड़ी है, केवल ऐसे ही पड़ी है, कुछ उपयोग नहीं है उसका, और ये लोग इसका खेती नहीं कर रहे हैं और तरह के चीज़ें बना रहे हैं, परंतु हरियाली नहीं है इसमें, खेती नहीं, अनाज नहीं, सब्जी उगा नहीं रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि लोग गांव से शहर नहीं जाएं, गांव में ही रहें और वहीं पे खेती करें, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। फिर आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कैसे करना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः, कि सारे प्राणी अनाज पे निर्भर होते हैं और अनाज वर्षा से आती है और वर्षा यज्ञ करने से आता है और यज्ञ अपने निहित कार्य करने से आता है। तो उनको कीर्तन करने दीजिए और जैसे हम कीर्तन करेंगे तो हमारे खेती आदि के लिए भरपूर पानी आ जाएगा और जमीन में गीलापन आ जाएगा और फिर हमारे गायों के लिए चारा वगैरह का उत्पादन भी हो जाएगा और मनुष्यों के लिए अनाज भी हो जाएगा और साथ साथ गाय हमें दूध देगी। ये वृंदावन का जीवन है, ऐसा प्रभुपाद बोल रहे हैं। और इस वृंदावन के जीवन को छोड़कर वो बड़े बड़े शहरों में ऐश्वर्यशाली परिस्थिति का निर्माण करने जा रहे हैं, परंतु सच्चा ऐश्वर्य ये है, प्रभुपाद ऐसा बोल रहे हैं। तो ये सही बात है। अन्य जगह भी प्रभुपाद ने कहा है धान्य धनवान गवयो धनवान, कि सच्चा धनवान व्यक्ति कौन है भौतिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक दृष्टि से जो शुद्ध भक्त है वो तो धनवान है, परंतु भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो धनवान व्यक्ति कौन है, जिसके पास धान्य है अर्थात अनाज और जिसके पास गाय है। तो गवयो धनवान धान्य धनवान, तो प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि लोग शहरी ऐश्वर्य और चमक धमक से इतना प्रभावित हो गए हैं कि सच्चा जो ऐश्वर्य है जो कि केवल ग्रामीण भाग में मिलता है उसके बारे में वो नहीं जानते हैं और नहीं उसको उसमें वो रुचि रहते हैं। फिर वो वृंदावन का वर्णन करते हैं प्रभुपाद कि वृंदावन में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छे अच्छे पदार्थ थे खाने के लिए, अच्छे कपड़े थे पहनने के लिए। ये ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है कि वृंदावन के निवासी वो कृष्ण के साथ में रहते थे और गायों के साथ में रहते थे, तो कृष्ण और गाय के साथ में रहने से उनके जीवन में कितना ऐश्वर्य आ गया, ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है, श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से हमें भी वृंदावन के ग्राम बनाने का कार्यक्रम स्थापित करना है। जिस प्रकार से वृंदावन में लोग कृष्ण और गाय के साथ रह के सुखी रहते थे, आज भी हम लोग ग्रामीण भाग में ऐसे वृंदावन तैयार कर सकते हैं। प्रभुपाद का ये कार्यक्रम है जो कृष्ण का कार्यक्रम है, इसलिए ये प्रकल्प जो गोकुल धाम है, गोकुल क्या है, वृंदावन ही है ना, गोकुल कृष्ण की नगरी है, गोकुल जहाँ गाय है, गाय के जो घर है निवास स्थान है वो गोकुल है। तो प्रभुपाद का जो कार्यक्रम है बिल्कुल इसी को हम लोग यहाँ करना चाहते हैं इस गोकुल धाम में, कृष्ण गाय और खेती, इन तीन चीज़ों से हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा। फिर आगे प्रभुपाद कह रहे हैं बड़े बड़े जो बिल्डिंग है इमारत है उनकी परवाह नहीं करना, अर्थात जो बड़े शहरों में बड़े बड़े 10 मंजिल वाले 12 मंजिल वाले बिल्डिंग होते हैं ना, इमारत होते हैं, उनकी चिंता नहीं करना, प्रभुपाद बोल रहे हैं ये सब व्यर्थ है, बिल्कुल व्यर्थ, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल उत्पादन करो, तुम्हारे खेत को हरित करो, हरा भरा करो, ऐसे करने से तुम्हारी सारी आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। फिर बड़े अच्छी तरह से खाओ, खूब खाओ, और फिर जो गाय है वो गाय भी खुश रहेगी। ये गाय है वो दूध भी नहीं देगी तो कम से उनको खाने दो, और फिर वो गोबर देगी और गोमूत्र देगी, इसका स्वागत है। और क्योंकि खाने के बाद गोबर तो आएगा और ये बहुत लाभकारी है, ऐसा नहीं कि केवल दूध ही है लाभकारी गाय से, गाय का गोबर मूत्र भी बहुत लाभकारी है। इसलिए मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ, खेती 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 खेती, ये मेरा कार्यक्रम नहीं है प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये कृष्ण का कार्यक्रम है। अन्नाद भवंति भूतानि, सब जगह हरियाली होनी चाहिए, बनाओ हरियाली सब जगह वृंदावन बनाओ, ये मोटर गाड़ी वाली सभ्यता नहीं चाहिए हमको। तो सारी दुनिया इससे खुशी हो सकती है। युधिष्ठिर महाराज के समय गाय इतने प्रसन्न रहते थे कि वो अपने दूध से जमीन को गीला करते थे, तो जमीन पानी से नहीं दूध से गीला हुआ करता था युधिष्ठिर महाराज के समय, इतना ऐश्वर्य था, इतना दूध था। और ऐसे श्रीमद् भागवत में कहा गया है। फिर अपने शिष्य को कहते हैं वो भागवत का श्लोक निकालो तो ढूंढ निकालो। फिर शिष्य पूछते हैं कौन सा श्लोक, तो बोलते हैं शिशिचुहु गावह शिशिचुहु, उस प्रकार सर्व दुहामही, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही। काम ववर्ष पर्जन्य, महाराज युधिष्ठिर के राज्य में ऐसे बताया गया है। फिर कोई किताब श्रीमद् भागवत ठीक जगह में नहीं मिली तो प्रभुपाद शिष्य को डांट रहे हैं, यहाँ भागवत होना चाहिए, कहाँ है भागवत के लिए जगह रखा है तो भागवत कहाँ है, कहाँ रखा तुमने, तो किसी ने कोई ले गया है, इधर रखा था लेकिन कोई उठा के ले गया, बोले ये हमारा मैनेजमेंट है, प्रभुपाद बोल रहे हैं। देखो ऐसे व्यवस्थापन नहीं होना चाहिए, हर चीज़ अपने इस जगह में होनी चाहिए, बहुत बुरा व्यवस्थापन है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आंदोलन चलाना है, जगह जगह से लोगों को लेना है, सबको आश्रय देना है, पापी तापी जातो छीलो हरि नामे उद्धारी लो। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में सब लोगों का उद्धार करने के लिए आए हैं, तार साक्षी जगाई मधाई। हाँ यहाँ हमारे कार्यक्रम में एमए पीएचडी करके कोई नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों को सारे पापी से पापी लोगों में से ही चुनना होगा। और हम सिद्ध करेंगे कि ऐसे भी पापी तापी लोग हरि नाम लेके कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं, ये हमारा आंदोलन है। तो फिर वो भक्त श्लोक ढूंढ निकालते हैं, कामम ववर्ष पर्जन्य सर्व काम दुघामही शिशिशुः स्म व्रजान गावः पयसोद्धस्वतीर मुदा। प्रभुपाद कहते हैं ये है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर महाराज के राज्य में परिस्थिति ऐसी थी कि जमीन सदैव गीला रहना पड़ता था, और गीला पानी से नहीं दूध से। शिशिचुः स्म व्रजान गावः, क्या मतलब है इसका, कामम सब कुछ जो आवश्यक है। अनुवाद उस श्लोक का कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य के समय बादल उतना पानी बरसाते थे जितना लोगों को आवश्यक था, और पृथ्वी पर्याप्त प्रचुर मात्रा में मनुष्य की आवश्यकताओं को भी प्रदान करती थी। गाय के बड़े स्तनों के कारण और क्योंकि गाय प्रसन्न रहती थी, इसलिए गाय गोचर भूमि को दूध से गीला करती थी। ये महाराज युधिष्ठिर के समय परिस्थिति थी। तो प्रभुपाद अभी हमारे राजनेताओं को डांटते हैं, और डांटते हुए बोलते हैं, इसको शुरू करो मूर्ख, ये पार्टी वो पार्टी, केवल तुम्हारी राजनीति चलती है, तुम ये चालू करो कि सब जगह ऐसे खेती और गाय होनी चाहिए, ये चालू करो। वो अपने राजनेताओं को बोल रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। बड़े बड़े तरह तरह के सब पशु जैसे लोग अभी नेता बने हैं, बड़े बड़े मंत्री बने हैं, तो क्या फायदा है इनका, ये लोग ऐसे कार्यक्रम को स्थापित नहीं कर रहे हैं। तो कितना कठोरता से प्रभुपाद बोल रहे हैं, फिर प्रभुपाद कहते हैं कि जो लोग हैं केवल उनको हमारे खेती के प्रकल्प पर रह के खेती करके गाय को रख के कृष्ण का नाम लेके सुखी रहने दो, ऐसा सभी लोग सुखी हो सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में कुत्ता भी सुखी है, बिल्ली भी सुखी है, कि बिल्ली भी इतनी सुखी है कि वो भी जाके गाय के पीठ को खुजली करती है, और उसी प्रकार से कुत्ता भी सुखी है, ऐसे नहीं कि वो 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 जोर जोर से भौंकता रहे। मैंने देखा है, अपने आंखों से देखा है, प्रभुपाद कहते हैं। और ये केवल दूध के माध्यम से है, ये केवल कथाएं नहीं है, मैंने देखा है हमारे गीता नगरी खेत में। तो प्रभुपाद आदेश दे रहे हैं अपने भक्तों को, इस सारे भूमि को ऐसे करो और लोगों को सुखी बनाओ। तुम एक अच्छा उदाहरण सबके सामने पेश करो अमेरिका देश में, पैसा व्यर्थ नहीं गवाओ, अपने उदाहरण से दिखाओ। ये विज्ञान मोटर गाड़ी बहुत हो गया इसका, और नहीं चाहिए हमको। हमको क्या चाहिए? कामम ववर्ष पर्जन्यः, आसमान से पानी लेके आओ, जमीन को हमेशा गीला रखो और हरित रखो, ये चाहिए। ये मेरी इच्छा नहीं, कृष्ण की इच्छा है। इसलिए व्यासदेव कहते हैं कामम ववर्ष पर्जन्यः। ये लोग मूर्ख हैं, ये लोग नहीं जानते हैं, वो शास्त्रों को देखते नहीं है कोई निर्णय लेने के पहले, केवल अपने अपने नियम बनाते रहते हैं नए नए। चंडीगढ़ में इतनी भूमि खाली पड़ी है, 30 साल हो गए, और वो लोग केवल शहरों का विकास करते जा रहे हैं, और 400 साल लगेंगे, जमीन खाली पड़ी है। अभी और 2 राज्यपाल बनाएंगे, 5 कमिश्नर बनाएंगे, और 6 मंत्री बनाएंगे, जो बड़े बड़े तनखा लेंगे। ये सरकार है। तो सरकार की टीका करते हुए प्रभुपाद जी कहते हैं, सरकार आजकल का क्या मतलब, गरीब लोगों के पैसे लेकर मोटी मोटी तनखा लेना। जो हमसे लोगों से जबरदस्ती पैसे लेते हैं कोई कानून के सहारे, और बस आराम से वो जीते हैं, फिर नोट छापते जाएंगे, और इस प्रकार से महंगाई बढ़ती जाती है, क्योंकि उनको शक्ति है नोट छापने की, और ये लो कागज, ये पैसा है, हरे रंग का कागज पैसा। हमारे बचपन में हमने देखा है पैसा क्या होता था। यदि कोई पूछता था आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए या पैसा चाहिए, ये तीनों चीजें दी जाती थी। यदि आपको सोने के सिक्के चाहिए थे तो आप सोने लेते थे, यदि आपको चांदी चाहिए तो आप चांदी लेते थे, और पैसे चाहिए तो पैसे। लेकिन आजकल ऐसा नहीं, पहले ऐसे तीनों चीजों से कोई चीज खरीदी जा सकती थी। और हमारे परिवार में हमने देखा है बचपन में, हम लोग सोना खरीद के उसको पिघला के उसके फिर गहने बनाते थे, कोई पाबंदी नहीं लगाई थी, कोई रुकावट नहीं हुआ करती थी। सोना को जैसे चाहे वैसा खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता, फिर वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि उस श्लोक का तात्पर्य पढ़ो जो अभी उन्होंने पढ़ा था ना, कामम ववर्ष पर्जन्य, युधिष्ठिर महाराज के बारे में। तो उसी श्लोक के तात्पर्य को वो पढ़ रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि आर्थिक विकास का मूल सिद्धांत है भूमि और गाय। मनुष्य समाज की आवश्यकता है अनाज, फल, फूल, धातु, वस्त्र, लकड़ी इत्यादि। हमारी भौतिक या शारीरिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए। अवश्य हमें मांस नहीं चाहिए, मछली नहीं चाहिए, बड़े बड़े मशीन यंत्र नहीं चाहिए। महाराज युधिष्ठिर के राज्य के समय बरसात बिल्कुल नियमित रूप से पड़ता था। बरसात ये मनुष्यों के नियंत्रण में नहीं है, देवताओं के राजा इंद्रदेव वर्षा के नियंता हैं, और वो भगवान कृष्ण के सेवक हैं। जब राजा भगवान के आदेश का पालन करता है तो उस राजा की जो प्रजा है वो सब सुखी रहती है और उसके राज में नियमित रूप से वर्षा आती है, न ज्यादा न कम। और जब ऐसे नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है तो न केवल इससे प्रचुर मात्रा में अनाज और फलों का उत्पादन हो सकता है, परंतु साथ साथ जो नक्षत्रों के प्रभाव से तरह तरह के अनमोल रत्न, मोतियाँ इत्यादि, इनका भी उत्पादन होता है। तो अनाज और सब्जी आदि से मनुष्य और पशु दोनों खूब पेट भर के खा सकते हैं और एक प्रसन्न और स्वस्थ गाय पर्याप्त मात्रा में दूध प्रदान कर सकती है, जिससे कि मनुष्य बड़ा शक्तिशाली रहे। और यदि मनुष्य समाज में दूध है, अनाज है, फल है, कपास है, रेशम है, रत्न है, तो फिर ये सब सिनेमा, वेश्यालय, कत्ल खाने, इनकी क्या जरूरत है? ऐसे एक कृत्रिम भौतिकतावादी समाज की क्या आवश्यकता है, जिसमें बड़े बड़े सिनेमा हैं, गाड़ियां हैं, रेडियो हैं, मांस है, होटल हैं। ऐसी आधुनिक सभ्यता ने क्या झगड़ों के अलावा कुछ और चीज उत्पन्न किया है? हम देख रहे हैं कि झगड़े व्यक्तिगत स्तर पे होती हैं और राष्ट्र के स्तर पे भी होती हैं। तो आजकल ये आधुनिक सभ्यता ने क्या प्राप्त, क्या हासिल किया है? केवल झगड़े उत्पन्न किए हैं लोगों के बीच में। फिर आगे प्रभुपाद बोल रहे हैं, फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब सर्वनाश, फैक्ट्री मतलब सब कुछ विनाश होगा। इसका इसके विपरीत कृषि मतलब निर्माण और फैक्ट्री मतलब विनाश। फैक्ट्री मीन्स डिस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर मीन्स कंस्ट्रक्शन। तो फैक्ट्री का मतलब है विनाश और खेती का मतलब है निर्माण। पिताजी फैक्ट्री में जा रहा है और बच्चे भूखे रहे हैं, सर्वनाश। तो इस प्रकार से यहाँ इस संवाद में प्रभुपाद जी कितना कठोर बोल रहे हैं कि ये शहरी जीवन क्या है, विनाश है केवल, इसमें कोई लाभ नहीं है किसी का। और यदि हमें मनुष्य समाज का विकास करना है तो ये ग्रामीण सभ्यता का विकास होना आवश्यक है। ग्रामीण सभ्यता में हमें चाहिए कि हम खेती करें, कृष्ण भावना भावित रहें, गाय का पालन करें, गाय की रक्षा करें, सेवा करें और सब कुछ मिल जाए। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं न केवल हमें जमीन का उत्पादन मिलेगा, जैसे अनाज है, फल है, फूल है, परंतु फिर नक्षत्रों के योजना से नक्षत्रों का ऐसे स्थिति होगी कि यहाँ मोती रत्न भी प्रचुर मात्रा में उत्पन्न हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि जो लोग खेती करेंगे वो गरीब रहेंगे, ऐसा नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भागवत से इतना प्रमाण है कि लोग पहले खेती करते थे और देखो कितना ऐश्वर्य आता था, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित थे, कृष्ण के ऊपर निर्भर रहते थे, गाय की सेवा करते थे, इसलिए इतना ऐश्वर्य था। वैदिक सभ्यता जो है ये दारिद्र्य सभ्यता नहीं है, ये ऐश्वर्य की सभ्यता है। गोमय लक्ष वसते लक्ष्मी ही, कि गोबर गोबर में लक्ष्मी का वास है, तो ऐश्वर्य कैसे नहीं आएगा? तो यदि हम गाय बैल का ठीक से प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो गरीबी आ सकती है। यदि हम गाय बैल का ठीक से सेवा करें और उसका उपयोग करें गोबर और गौमूत्र का, दूध का भी, तो समस्त प्रकार के ऐश्वर्य सब चीजें आ सकती है। और साथ साथ संकीर्तन करते रहे, यज्ञ हो जाएगा, वर्षा भी सही तरह से आएगी, हमारी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इसलिए हमें इन बातों में पूरी श्रद्धा रखनी चाहिए। तो ये है गोकुल धाम का प्रकल्प का उद्देश्य। जैसे अभी इस संवाद में प्रभुपाद जी ने कहा है, बिल्कुल वैसे हमें यही करना है। तो इस संवाद का सार ये है कि लोग गांव से भागे जा रहे हैं शहर में, लेकिन प्रभुपाद चाहते हैं कि ग्रामीण विकास इतने अच्छे ढंग से हो कि लोग शहरों से गांव में भाग के चले हैं। अभी ऐसे हुआ है ना गोकुलधाम में। आप में से जो भी यहाँ गोकुलधाम में रहते हैं, कितने अभी यहाँ हमेशा रहते हैं गोकुलधाम में, हाथ ऊपर कीजिए। हमेशा रहने वाले कितने भक्त, हमेशा रहने वाले कितने हैं हरिधाम में, रहते हैं ना इधर, तो इतने भक्त है। अच्छा ठीक है, अभी
आने वाले
हैं। तो ये बताइए कि आप में से जो अभी गोकुलधाम में रह रहे हैं, केवल दो चार दिन के आने वाले भक्तों की बात नहीं है, जो लंबे समय से रह रहे हैं और आगे रहेंगे, आप में से कितने भक्त पहले शहर में रहा करते थे, हाथ ऊपर कीजिए। प्राय सभी लोग है ना। आप में से कितने भक्त गांव में रहते थे पहले? एक, दो, तीन। गांव में कहाँ, पूना में रहते थे ना, कि कहाँ रहते थे? हाँ पूना में, बॉम्बे में, फिर गांव कहाँ हुआ? यहाँ बेलगाम में पढ़ाई की, फिर बॉम्बे में नौकरी किया, पूना में नौकरी किया, है ना। तो गांव से शहर में गए कि नहीं, फिर शहर से अभी भाग के गांव में आए, है ना। तो देखो प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं यही हो रहा है यहाँ गोकुलधाम में। प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि जो गांव छोड़कर शहर में भाग रहे हैं उनको रोका जाए और शहर से लोगों को गांव में लाया जाए। ऐसे ही हो रहा है ना, शहर से भाग के लोग यहाँ आए हैं सब। अधिकतर 80% जो यहाँ गोकुलधाम के भक्त हमारे हैं वो शहर से ही आए हुए हैं सब। तो प्रभुपाद उधर गोलोक वृंदावन बैठ के बहुत प्रसन्न हो रहे होंगे आप सबके ऊपर। ये देखो हम जा चाहते थे, हमारी इच्छा पूर्ण हो रही है। तो ऐसे ये गोकुलधाम का उद्देश्य है, ऐसे एक सुंदर प्रकल्प यहाँ निर्माण करना जिससे कि सारे शहर के निवासी सोचेंगे, अरे हम लोग कैसे शहर में जी रहे हैं, इतना खराब जीवन है, ये देखो गोकुलधाम में लोग इतना आनंद से जी रहे हैं, इतना सुंदर जीवन इनका है, हम भी वहां जाना चाहते हैं। तो ये इसका उद्देश्य है कि सारे शहर के लोगों को भी, गांव के लोगों को भी आकर्षित करना। जो शहर के लोग हैं उनको ग्रामीण जीवन के प्रति आकर्षण निर्माण करना ताकि वो यहाँ पे आएं और इस प्रकार का जीवन जिएं, और जो अन्य गांव में रहते हैं उनके मन में ग्रामीण जीवन के प्रति एक श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न करना ताकि वो गांव को छोड़ के शहर में नहीं जाएं, अपने पास जो ऐश्वर्य खेत आदि का है उसको ही अच्छी तरह से उसका खेती वगैरह करके विकास करें। ठीक है, तो अभी थोड़ा भजन करेंगे। कौन सा भजन, कोई सुझाव है?